ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुं विवृतां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साधुजातं सैगन रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधवेतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणदलिता श्रीविशाखामृतांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्ण। आज हम प्रहलाद प्रपात निरमित के ऊपर चर्चा करेंगे। आज भागवत क्लास नहीं रहेगी, आज भागवत पर्सन बुक भागवत एंड पर्सन भागवत, एक व्यक्ति भागवत और भागवत ग्रंथ। तो व्यक्ति भागवत का मतलब जो जिसका जीवन भागवतम पर आधारित हो या श्रीमद भागवतम इनटू प्रैक्टिस। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं और जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पे सबसे आशीर्वाद मांगना चाहूँगा, विशेष रूप से केशव भाई को जी, भोले कृष्ण जी, राम भागव को जी, आप आशीर्वाद दीजिए कुछ हम बाबा जी के जीवन के चरित्र के बारे में कुछ गुणगान कर सकें। हरे कृष्ण। तो ये जो सेक्शन चल रहा है इस समय, बाबा जी अभी वृंदावन में ही हैं, भारत में ही हैं, और इसका जो चैप्टर का नाम है भारत वापस। और तो यहाँ पर बाबा जी अनेक लीलाएं अपने भक्तों के साथ, जिसमें बाबा जी एक जो मुझे समझ आया यहाँ पर एक रोल में देख पाया प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद एज ए ट्रेनर कि अपने भक्तों को कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं और कितनी डिटेल्स में जाके प्रशिक्षण देते हैं, कहाँ कहाँ में जाके प्रभुपाद जी को उनको बताना पड़ता था भक्तों को। और जितने भी हम यहाँ पे प्रभुपाद की भक्तों के साथ लीला देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उससे पता लगेगा कि कितना प्रभुपाद ने संघर्ष किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना पेन लिया अपने भक्तों को ट्रेन करने के लिए। तो हम अभी मायापुर गए थे, कल ही हम सुबह मायापुर से आए थे, तो वहाँ पर एक प्रभुपाद जी का कोट लिखा था, हमारा एक स्कॉन लीडरशिप संघ वहाँ पे सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पे कई सारे कोट्स लगे थे प्रभुपाद जी के। तो उसमें से एक कोट प्रभुपाद जी उसमें कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक कारण है कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडरशिप नहीं है सही प्रकार की, जिसके कारण लोग दुखी हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक परफेक्ट स्पिरिचुअल ट्रेनर के रूप में एक रोल ले रहे हैं और कैसे भक्तों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हम कुछ लीलाएं पढ़ेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी भी वृंदावन में हैं और सरस्वत महाराज अब लिख रहे हैं ऐसे। श्रील प्रभुपाद ने अपने पत्रों और पुस्तकों में बताया था कि आध्यात्मिक गुरु का एक कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्यों के दोषों को अनावृत करे, मतलब एक्सपोज करे, चाहे दोष थोड़ा ही क्यों ना हो। और योग्य शिष्य गुरु के सामने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से हीन और सदैव मूर्ख समझता है, इसलिए वह आध्यात्मिक गुरु की आलोचना को उनकी अनुकंपा मानता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं ससुर महाराज जी कि प्रभुपाद जी उनके छोटे छोटे दोषों को भी पकड़ते थे, इतनी बड़ी मूवमेंट है, इतने बड़े लीडर्स हैं, छोटे छोटे दोषों को क्या कोई भी नदर वी कैन नेग्लेक्टेड। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे छोटे छोटे दोषों को भी बता रहे अपने भक्तों के, आगे कुछ ऐसे दोष बताएंगे, लेकिन पहले से ये चर्चा कर लें कि ये छोटी छोटी गलतियाँ आगे बड़ा रूप ले लेती हैं। और वास्तव में जो छोटे छोटे कार्य को अच्छा कर सकता है बाद में वही बड़े कार्यों को बहुत अच्छी भली बात ही से कर सकते हैं, इसे ये समझ आता है। एक बार एक प्रभा जी के रूम में एक बार ऐसे एक भक्त आए और प्रभा से मिलने आए थे, और उन्होंने कुछ प्रभा जी का पेन यूज़ किया और पेन वहीं पर छोड़ के चले गए, तो वापस चले गए, तो कुछ साइन करने थे कुछ ऐसे करके। तो प्रभा ने दोबारा उनको बुलाया, अरे पेन वापस अपनी जगह पर रखे जाए जहाँ से पेन के केस में से निकाला था। तो इतना छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पर ट्रेन करना पड़ता है। और एक बार ऐसे प्रभा जी वृंदावन में आए तो भक्तों ने कहा कि प्रभा जी यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास। प्रभा ने सुना, इधर देखा, थोड़ा इधर देखा तो प्रभा एजिटेट हो गए, कह रहे यहाँ पे सब कुछ फिफ्थ क्लास है, फर्स्ट क्लास क्या रहे हो आप यहाँ पे। तो प्रभा ने ऊपर दिखाया, एक घोंसला बना हुआ था, तो वैसे ये गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि प्रभा यहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो प्रभा ने देखा ये घोंसला कहाँ से है, मैं 6000 मील दूर आया हूँ आपको एक घोंसला दिखाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें बताते प्रभा जी। और एक बार ऐसी प्रभा जी जब वृंदावन में थे तो प्रभा जी वुड मेक ए पॉइंट, जो वृंदावन में जो बेल है घंटा है वो हर घंटे में बजना चाहिए और जब आरती हो तभी वो बजना चाहिए। तो ऐसे ही एक बार रात को देखा प्रभा ने कुछ घंटे की आवाज़ नहीं सुनी दे रही, घंटा हुआ है कि नहीं हुआ। और प्रभा जी 12 बजे उठ जाते थे, 12:30 से। तो हरिकेश महाराज को प्रभा ने उठाया और कहा कि चौकीदार सो रहा है उसको उठाओ और बोलो उसको घंटा बजाए। तो उन्होंने उठाया उसको, चौकीदार को बोला घंटा बजा, और उसने घंटी बेल बजाई और फिर चौकीदार दोबारा सो गया फिर, और हरिकेश महाराज भी सो गए उसके बाद। फिर प्रभा ने अगले घंटे में देखा, फिर दोबारा घंटा नहीं बजा, फिर दोबारा उसको उठाया, अपने डिसाइपल को उठाया और दोबारा बोला उसको बजना चाहिए। तो प्रभा कहते आई एम जस्ट जजिंग योर टेम्पल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल ऑर्डर, कि आपसे एक घंटा नहीं बजा सकते पूरी टेम्पल मैनेजमेंट क्या करोगे। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों को प्रभा बहुत बड़ा देखते थे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से डिसाइपल कॉम्प्लीसेंट ना हो जाए, कैजुअल ना बन जाए, नजरअंदाज करने लग जाए, बाकी फिर आगे बड़ी बड़ी चीजों को भी नजरअंदाज नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो और इसमें लिखा कि जो भी प्रॉपर करेक्शन देते थे डिसाइपल अपने आप को बहुत दीनहीन मानते थे और अपने आप को मूर्ख समझ के उस करेक्शन को ले पाते थे और आगे उसका सुधार कर पाते थे। तो आगे इस प्रकार की चर्चा आती है। एक दिन शिला प्रभुपाद मंदिर के प्रबंधकों से मिल रहे थे, मैनेजर से मिल रहे थे, वे व्यवहारिक विचार चाहते थे मात्र भावुकता नहीं। उन्होंने वृंदावन में ज्यादा खर्च की शिकायत की, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता वृंदावन में, जो अब बंबई में भी हो रहा था जहां निर्माण कार्य अभी शुरू हो गया था। उन्होंने कहा तुम यहां पैसे लुटाओगे और सुर भी बंबई में लुटाएगा, इस बर्बादी को रोकने के लिए तुम्हारी क्या योजना है, तुम क्या करोगे। किसी को मालूम नहीं था कि क्या कहना है, लंबी चुप्पी रही, देयर वाज लॉन्ग साइलेंस। अंत में अक्षयनंद बोला कि प्रभुपाद हम कृष्ण भावित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उद्गार रूप से कहा, यह अव्यवहारिक सुझाव है, इट्स इम्प्रैक्टिकल सजेशन। कभी कभी जैसे प्रभुपाद लेक्चर में बताते थे कि कृष्ण कॉन्शियस बन जाइए सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन यहां पे डिसाइपल ने ऐसा उत्तर दिया। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कुछ ठोस प्रैक्टिकल सजेशन जिससे कि समाधान निकले। तो भावुकता वाला सब्जी कि हम कृष्णा भावित हो जाएंगे और सब कुछ, अगर कृष्णा भावित होते तो पैसे खर्च ही नहीं होने चाहिए वास्तव में। तो सो प्रभुपाद का जो प्रिंसिपल था, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन कृष्ण कॉन्शियस, वास्तव में कृष्ण भावित होते पहले आप तो इतने पैसे नहीं खर्च होते, क्योंकि कृष्ण का पैसा है। अक्षयनंद स्वामी नित्य वज्रपात की आशा करते थे, मतलब थंडर बोल उनको डांट मिलती रहती थी प्रभुपाद जी से, किंतु इससे प्रभुपाद के साथ रहने की उनकी इच्छा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन सवेरे के भ्रमण में प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन का मौसम गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत कठोर है, सर्दी में ठंडक के साथ कभी कभी वर्षा भी आती है। अक्षयनंद ने कहा प्रभुपाद चाहे आकाश से मलमूत्र और पीप तथा रक्ती वर्षा भी हो तो भी हमें वृंदावन में रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने मुख पर लगभग शरद भरी मुस्कान आ गई और वे बोले ओह आप ऐसी उम्मीद रखते हैं क्या। ऐसा सुनकर भक्तगण में हंसी फूट पड़ी। एक अन्य अवसर पर अक्षयनंद स्वामी ने पूछा क्या शास्त्र में कही गई यह बात सच है कि एक दिन में एक बार शौचालय जाने वाला व्यक्ति योगी होता है, दो बार जाने वाला भोगी होता है और तीन बार जाने वाला रोगी होता है। प्रभुपाद ने कहा हां, और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा किंतु एक दिन में एक बार शौचालय जाने वाले व्यक्ति का प्रयास मत करो, अच्छा, अक्षरण ने उत्तर दिया। शिला प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। क्या तुम समझते हो कि दिन में एक बार शौचालय जाकर तुम योगी बन जाओगे क्या? तो प्रभुपाद इज वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि कोई एक बार जाए तो योगी बन जाए। योगी के लिए मतलब योग करना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस डिवोशन सर्विस परफॉर्म करनी चाहिए। तो यहाँ पे एज ए ट्रेनर प्रभुपाद यहाँ पे भक्तों को एक प्रैक्टिकल फिलोसफी के रूप में सिखा रहे हैं, यानी कि सिर्फ सेंटिमेंटल रूप में कुछ भी बातें करें, कुछ भी हवा में रहे। तो आगे हरीश्वरी प्रभु के साथ प्रभुपाद जी की एक लीला है। यहाँ पे हरीश्वरी का अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संपर्क बहुत कम था, लेकिन एक दिन वृंदावन में प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया उनकी एक गंभीर त्रुटि बताने के लिए। बहुत एक गंभीर विषय के बारे में बताया, बुलाया था उनको। मंदिर में एक नायक की हैसियत से, नायक मतलब टेंपल कमांडर, मंदिर में एक नायक की हैसियत से हरीश्वरी ने एक बूढ़े व्यक्ति को मंदिर में विग्रह के सामने खाने से मना किया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विग्रह के सामने कुछ खा रहा था। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया और एक युवा बंगाली पुरुष उसका पक्ष लेकर हरीश्वरी पर चलाया था कि वे मंदिर में किसी को आलोचना करने का उसका अधिकार नहीं है। हरीश्वरी ने उसकी उपेक्षा करने की कोशिश की, अवॉइड करने की कोशिश करी, लेकिन युवा बंगाली का चिल्लाना जारी था। उसने हरीश्वरी को धमकाया कि वह उसे मंदिर से बाहर फेंक देगा और उसकी शिखा काट देगा। अंत में हरीश्वरी ने युवक की बाएं मोड़ दी और चौकीदार से उसे बाहर फेंक देने को कहा। श्रील प्रभुपाद ने शीघ्र ही इस घटना के बारे में जब सुना और हरीश्वरी को तुरंत बुलाया। अब हरीश्वरी ऐसे लिख रहे हैं, हरीश्वरी ने सोचा कितना अशुभ है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहली बार बुलाया है और वह भी इस तरह की दुर्घटना के संदर्भ में। प्रभुपाद ने उन्हें डांट नहीं बताई, पहले डांट नहीं लगाई, पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उनसे सारी बातें बताने को कहा। पहले कुछ कहने से पहले उनका वर्जन पूछा कि क्या, अच्छा घटना क्या हुई थी। तो हरीश्वरी को यह अवसर अच्छा लगा और वह पूरी कहानी कहने लगा। जब उसने उल्लेख किया कि उस बुड्ढे ने कहा कि अधिकार के साथ बात करो, और हरीश्वरी ने उसे बताया कि वह मंदिर का नायक है। एक्चुअली इसमें थोड़ी ट्रांसलेशन की गलती है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं अथॉरिटी से बात करूंगा, ऐसा इसमें इंग्लिश वर्जन में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अथॉरिटी हूं, मैं टेम्पल कमांडर हूं। तो प्रभुपाद ने उसे बीच में टोका। अब प्रभुपाद ने पॉइंट को पकड़ लिया, हुआ क्या था एक्चुअली। प्रभुपाद ने उस अपने शिष्य को चुपती हुई नजरों से देखा। मंदिर के नायक का अर्थ प्रधान सेनापति नहीं है, कह रहे हैं अगर आप टेम्पल कमांडर तो इसका मतलब नहीं आप कमांडर चीफ बन गए। विग्रह के सामने प्रसाद खाने की बात तुम्हें कहां से सुनी थी? हरीश्वरी ठीक संदर्भ याद नहीं कर पाया और वह घबरा गया। उसने कहा, मैं समझता हूं मैंने इस बारे में आपकी किसी पुस्तक में पढ़ा था। प्रभुपाद ने कहा, हूं। प्रभुपाद ने उस पर फिर से दृष्टि डाली। वे उसकी अज्ञान भरी भूल को समझ सकते थे। हरीश्वरी ने जो कुछ भी किया था भारत में अपनी अनुभवहीनता के कारण उनका अंतर्निहित गंभीर अर्थ वह नहीं समझ सका। ही वॉज इनएक्सपीरियंस इन इंडिया, और इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं कि महाराज लिखते हैं कि उनका क्या इंप्लीकेशन था अंतर्निहित उसका, जो कि इस जो उन्होंने ऐसा घटना करी है, किसी बात मोड़ के चौकीदार से बाहर फेंकवा दिया, इसका क्या परिणाम हो सकता था ये उसने सोचा नहीं, क्योंकि इसको भारत में पता नहीं था कि कैसे कार्य होते हैं। तो वस्तुत है इस्कॉन भक्तों और वृंदावन निवासियों के बीच संबंध की संवेदनशीलता को दृष्टि में रखते हुए प्रभुपाद को उनकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए था। यह उनकी अज्ञान त्रुटि पूर्ण त्रुटि थी, किंतु अज्ञान को क्षमा करने का कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो प्रभुपाद ने कहा, यह बड़ा अपराध है। वह युवक बाहर जाके कहेगा कि विदेशी ने मुझे बाहर फेंक दिया, यह बहुत खराब है। प्रभुपाद ने हरीश्वरी को गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, अब तुम मालूम करो कि वह आदमी कहां रह रहा है और उसे यहां वापस लाओ, उसे लौट आने को आमंत्रित करो। हरीश्वरी ने उस बंगाली युवक को ढूंढने का पूरे दिन भरसक प्रयत्न किया। ऐसा कहा गया है कि वह मथुरा के किसी होटल में रुका था, वो युवा बंगाली लड़का, लेकिन हरीश्वरी को सफलता नहीं हुई। निराश होकर वह मंदिर लौट आया, और जो ही वह मंदिर लौट आया एक भक्त ने आकर उसे बताया कि प्रभुपाद आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, ओह नहीं, अब प्रभुपाद वास्तव में क्रोधित होंगे। हरीश्वरी प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ, जो अच्छे गैस से भरा हुआ था। प्रभुपाद ने कहा, यह लड़का आ गया। और जब हरीश्वरी ने कमरे के चारों ओर देखा तो उन्हें वही युवक ब्राह्मण बंगाली बैठा मिला। वह आदमी मुस्कराया और बोला, हरे कृष्णा। तो वो बंगाली लड़का वहीं पे खड़ा था और वे एक दूसरे के गले मिले और परस्पर क्षमा याचना करने लगे। श्री प्रभुपाद फर्श पर रखी फलों की टोकरी की और संकेत करते हुए हरीश्वरी से बोले, तो तुम इसे यह फल दो। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को जाने को कहा और कमरे बैठे अन्य लोगों से उपदेश देने लगे। दोनों की असहमति का समाधान हो गया, किंतु ये स्वयं प्रभुपाद थे जिन्होंने योग बंगाली का हृदय विवर्तन किया और एक विस्फोटक घटना को शमित किया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जब उन्होंने देखा कि हरीश्वरी से कुछ एक सीरियस मिस्टेक हुई है, तो पहले ऐसा नहीं कि एकदम बुला के उनको डांटना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा एक प्रिंसिपल है कि पहले उसका वर्जन जाना चाहिए ताकि उससे पूछे कि क्या गलती क्या हुई है ऐसे। तो वर्जन पहले उनका सुना, जब उन्होंने बताना शुरू किया तो एग्जैक्ट जहां पर पापा जी को गलती लगी वहां पर पिन पॉइंट किया। गलती सिर्फ ये थी, इसका अगर रूट कोज देखा जाए कि वो अपने आप को समझते मैं अथॉरिटी के रूप में मैं किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने ये एक इस कॉन्शियस मेंटेलिटी को पकड़ा उनकी कि हाँ, कि इस प्रकार से ये भक्त सोच रहा है, और उसको तुरंत वहीं पर ठीक किया। ऐसा भी कर सकते थे प्रभुपाद बुला के सीधा डांटना शुरू कर दे, लेकिन इससे उनको शायद अपनी गलती रियलाइज ना होती। तो एक स्पिरिचुअल ट्रेनर के रूप में हम यहाँ से प्रभुपाद जी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं किसी को कभी भी कुछ भी कह दें, पहले उसका वर्जन जाने, सोच समझ के, तोल के फिर बोला उनको। और उनको भी पता था कि इंडिया में नए हैं, लेकिन इस घटना का बहुत ही एक सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है, बहुत बुरा परिणाम हो सकता है कि बाहर जाके वो सभी को बताया कि इन विदेशियों ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो और जब प्रभुपाद ने देखा कि हाँ, एक टास्क दिया कि हाँ ढूंढ के लाइए, तो जब नहीं ढूंढ के लाए तो प्रभुपाद ने खुद अरेंजमेंट किया उनको बुलाने का। और यहाँ पे तो एक ऐसे स्पेशल ट्रेनर के रूप में हम देख सकते हैं कि एक गुरु ये जानता है कि कहाँ पे शिष्य गलती करेगा और कहाँ पे उसको मदद की जरूरत है। तो वहां कहाँ पे उसको मदद की जरूरत है वहां पे उसकी मदद पूरी करके तो शिष्य को भी करेक्ट किया और साथ में सारी सिचुएशन को भी समाधान कर दिया। और इससे पहले एक्सलेंस प्रभु बता रहे हैं, स्वामी महाराज बता रहे हैं कि हालांकि प्रभुपाद बहुत डांटते थे, उनको रोज व्रजपात होते थे, बहुत थंडरबोल्ट्स रोज मिलते थे, लेकिन इसके कारण उनकी प्रभुपाद से समीप जाना उन्होंने बंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो प्रभुपाद के पास जाना बंद कर दिया कि प्रभुपाद बहुत डांटते हैं, हमेशा गलती पिन पॉइंट करते रहते हैं, गलतियां बताते हैं, हमें करेक्ट करते हैं। हालांकि ये होने के बाद भी हमेशा प्रभुपाद जी के पास समीप जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, ये प्रभुपाद हमें प्रेमवश बता रहे हैं। और वास्तव में ये एक दिस इज साइन ऑफ लव कि आप अगर आप किसी को करेक्ट करें और दोबारा वो आपके पास आ रहा है सुनने के लिए, इट मीन्स द पर्सन हैज अ रियल लव फॉर यू। नहीं तो एक टेंडेंसी होती है कि दूर जाना पसंद करेंगे या उनके समीप आना ना पसंद करें, है ना। यहाँ पे एक ये शिक्षा सीखने को मिलती है कि आप किसी को डांट रहे हैं, कुछ करेक्ट कर रहे हैं मैनेजली, लेकिन किसी भी रूप से, लेकिन उस डिसीजन को लेने के पहले और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी को एक कड़वी दवाई भी दे रहे हैं तो कड़वी दवाई तभी डाइजेस्ट होती है जब साथ में उसके बाद कुछ मीठा दिया जाए। तो जैसे एक घटना है, एक बार एक मठ में एक सन्यासी थे, और तो वो सन्यासी हर किसी को बहुत डांटते थे, बहुत करेक्ट करते थे। तो ऐसे करते करते देखा कि बहुत समय के बाद, थोड़े समय के बाद, उस मठ में रहने वाले भक्तों की संख्या बड़ी कम हो गई, और बाद में ये हुआ कि अंत में वो सन्यासी बचे वहां पर। तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभी करेक्शन इज रिक्वायर्ड, इज नीडेड, लेकिन वर्क यू डूइंग बिफोर एंड आफ्टर करेक्शन, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि उसके पहले क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम कैसे डील कर रहे हैं उस वक्त से, ताकि वो सही से उसको डाइजेस्ट करें, उसको रियलाइज करें, ताकि आखिर अच्छे रूप से उसको कर सके। तो हमारी भी एक मीटिंग थी, एक हमारी पंचायत की मीटिंग हुई थी जोनस गोपाल के, उसमें महाराज से तुम्हारा बताया था मैनेजमेंट इज अ रिफाइंड आर्ट, कि कैसे लोगों को इंस्पायर भी करना है, डिसिप्लिन भी करना है, एक बहुत रिफाइंड आर्ट है। तो ये भक्तों को सीखना चाहिए, कभी कभी भक्तों को करेक्ट भी करना पड़े, लेकिन साथ के साथ उनको ये इंस्पायर करें कि उनको रियलाइज भी और और उनको इंस्पायर भी हो आगे सही तरह रूप से कार्य करने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं, अब प्रभुपाद की वृंदावन की शिष्याओं, द वुमेन डिसिपल ऑफ प्रभुपाद, जिन्होंने उनकी आलोचना का लाभ मिला था, जिनको भी प्रभुपाद से करेक्शन मिली थी, उनमें से थी एक देवी शक्ति जो उनके आवास की सफाई के लिए जिम्मेवार थी। अन्य उनकी सहायता करते थे किंतु वह निरीक्षण करती थी, वो सुपरवाइजर थे। जब प्रभुपाद ने देखा कि एक शीशा साफ नहीं किया गया तो उन्होंने पूछा कि कौन सफाई करता है, और उनके सेवक ने उत्तर दिया देवी शक्ति। प्रभुपाद बोले तो उसी को सब कुछ करना चाहिए। यह आलोचना उन आलोचनाओं जैसी भारी नहीं थी जो प्रभुपाद मंदिर के कुछ प्रबंधकों को कर चुके थे, किंतु देवी शक्ति ने इसे यह संकेत समझा कि उसे अपनी सेवाओं के सभी पहलुओं पर अधिक सचेत रखना चाहिए। तो यहां पर एक प्रिंसिपल ऑफ करेक्शन प्रभुपाद जी एक और प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से, कि अगर आप किसी को करेक्ट कर रहे हैं तो उसका उसका क्या प्रिंसिपल होता है ट्रेन करने का, कि वो व्यक्ति सचेत बन जाए। द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल इज टू एंगेज हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज टू एंगेज हिज डिसाइपल एंड मेक हिम मोर कॉन्शियस अटेंटिव टू द डिटेल्स ऑफ द सर्विस। तो प्रभुपाद यहां पर छोटी छोटी चीजों को भी यहां पर पिन पॉइंट कर रहे हैं, यहां पर दर्शा रहे भक्तों को, ताकि वो अपनी सेवाओं के प्रति बड़े सचेत रहें, जिम्मेवार बने, और अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ डिवोशन, ताकि उनकी भक्ति निकल जाए। जितना व्यक्ति डिटेल्स में जाके सेवा करता है उससे उसकी उतनी भक्ति का पता लगता है, कितना वो चीजों के अंदर डिटेल्स में जाके सेवा करता है, कितनी वो उसके बारे में जानकारी रखता है, इससे पता लगता है कि उसके अंदर कितनी भक्ति है, कितनी जिम्मेवारी से वो भक्त सेवा कर रहा है। तो आगे प्रभुपाद बोले तो उसी को सब कुछ करना चाहिए। यह आलोचना ये पढ़ चुके हैं, अब आगे आता है। विग्रह के लिए प्रसाद तैयार करने वाली किशोरी देवी दासी ने श्री प्रभुपाद से अपनी सेवा के कुछ आयामों के विषय के बारे में पूछा। उन्होंने परामर्श दिया कि कृष्ण के लिए वैसा ही प्रसाद तैयार करो जैसा अच्छी भूख वाले एक युवा पुरुष का भोजन होता है। कृष्ण को 10 पूड़ियां, 4 चपातियां, बड़ी मात्रा में चावल, 2 समोसे, 2 कचौड़ियां और 2 वड़े और हर प्रकार की 2 मिठाइयां, इतना मिलना चाहिए। उनको अर्पित होने वाला प्रसाद गर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा तो अब तुम्हें प्रत्येक को सिखाना है कि प्रसाद कैसे बनाया जाता है। तुम्हें हर एक को वह देना चाहिए जो तुमने पाया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये ट्रेनिंग देने अपने डिसाइपल्स को, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, कि जो आपने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाइए। पहले एक को ट्रेन करना, एक में इन्वेस्टमेंट किया ट्रेनर में, देन दैट ट्रेनर विल इन्वेस्ट इन अदर ट्रेनर्स, तो कि एक को सिखा के वो भक्त आगे किसी और को सिखाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक ट्रेनिंग प्रिंसिपल यहाँ पर पता लगता है। किशोरी श्री प्रभुपाद के लिए तीसरे पहर एक माला भी लाती थी, उसे शीतलतादायक बनाने के लिए वह उस पर जल भी छिड़क देती थी। 2 दिन तक प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, किंतु तीसरे दिन वे बोले इसे ले जाओ, इस पर जल क्यों छिड़क देती हो, यह बहुत खराब लगता है। हालांकि 2 दिन तक प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब देखा कि एक भक्त वैसी सेवा कर रहा है, और सेवा तो ठीक है करने का भाव है, लेकिन सही प्रकार से सेवा भी होनी चाहिए, जिस उद्देश्य से सेवा कर रहे हैं कि हाँ ठंडक शीतलता मिलने के, लेकिन वो शीतलता देने के बजाय पूरा शरीर को गीला कर देता था। तो एक सही तरह से सिखाने की किस प्रकार सेवा भी करनी चाहिए। विशाल का ऐसा अभ्यास था, विशाल एक भक्त है प्रभुपाद जी के, जिसे अन्य भक्त सनक समझते थे, सोचते कि थोड़ा सनकी है। वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और जब प्रभुपाद जी वहां से गुजरते थे तो वह उच्च स्वर में संस्कृत के श्लोकों को सुनाने लगता। एक दिन सवेरे प्रभुपाद दरवाजे से प्रकोप की मुद्रा में वहां से निकले, और जैसा कि विशाल का अभ्यास था वे आगे बढ़कर श्लोक सुनाने लगा। प्रभुपाद ने कहा कोई उपयोगी कार्य क्यों नहीं करते, इस पानी को झाड़ू से निकाल दो। तो पानी था, कहा कि यहां से इसको झाड़ू से साफ करो इसको। तो एक बार ऐसी घटना भी आती है, तो प्रभुपाद एक नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेकंड वर्स की पहली लाइन में लिखते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इट्स नॉट जस्ट अ ड्राई सेंटिमेंटल फिलॉसफी। कि कृष्णा भाव का मतलब है कि कुछ प्रैक्टिकल कार्य करना। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक बार प्रभुपाद जी बालकनी में खड़े थे, और उसके साथ ही बालकनी में यमुना देवी माता जी खड़ी थी। तो बालकनी से यमुना देवी माता जी ने कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आई लव यू। तो प्रभुपाद ने कहा आई लव यू टू। तो जब ये घटना सुनी आगे और भक्तों को पता लगी, तो एक घटना भक्तों के समाज में सबको पता लगा, तो एक माता जी को भी पता लगा। तो उनको उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रभुपाद जी को ऐसे ही कहूँगी। तो जब उन्होंने मौका देखा कि प्रभुपाद जी अकेले बैठे थे, और तो उनका विचार था कि मैं प्रभुपाद जी को ऐसे बोलूँगी और प्रभुपाद जी मुझे क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो वैसे सोच ही गई थी। तो जब प्रभुपाद जी अकेले थे तो चुपके से उनसे मिलने गई और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आई लव यू। जैसे प्रभुपाद ने सुना उनको, कहा डोंट टॉक समथिंग इम्प्रैक्टिकल, समथिंग सेंटिमेंटल, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो उसको ऐसे कर किया। तो सोचा कि प्रभुपाद जी मुझे कहेंगे कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रभुपाद ने कहा ये सिर्फ सेंटिमेंटल बातें मत करो, कुछ प्रैक्टिकल करो। तो अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी अलग व्यवहार करते थे। हालांकि यमुनावती माता जी बहुत उनके लिए कुछ करती थी, अब उसके बेस पे वो कह रहे हैं कि हाँ कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो कुछ समझ आता है। कोई सिर्फ कहे कि मैं प्रभुपाद जी आपसे कुछ मैं आपसे प्रेम करता हूँ लेकिन कुछ ना करें, तो जस्ट सेंटिमेंटल। प्रेम का मतलब कुछ करके दिखाना, सेवा। तो आगे श्रील प्रभुपाद अतिथि गृह के भोजन का स्वाद नमूने के लिए रोज चखते थे और प्रायः उसमें सुधार के लिए सुझाव देते रहते थे। नव योगेंद्र प्रतिदिन उपहार गृह से, मतलब रेस्टोरेंट से, प्रभुपाद के लिए एक प्लेट में व्यंजन लाता था और तब हर व्यंजक पर प्रभुपाद की टिप्पणी नोट करता जाता था। अगले दिन रसोइये प्रभुपाद की टिप्पणी को आधार बनाकर व्यंजनों में सुधार लाने का प्रयत्न करते थे। ऐसा ही प्रत्येक विभाग के साथ ऐसे प्रभुपाद जी हर डिपार्टमेंट को चेक करते थे कि कुछ ना कुछ वहां के सैंपल्स लेके कि किस प्रकार की मैनेजमेंट हो रही है, किस प्रकार की, चाहे गाड़ी भी कैसे चल रही है, इसमें आप इसकी सर्विस करा रहे हैं करा रहे हैं, आगे ये एग्जाम्पल आएगा। ऐसे ही प्रत्येक विभाग के साथ था। कार में चलते समय भी प्रभुपाद पूछते थे, तुम इसका तेल पानी नियमित रूप से देखा करते हो कि नहीं, क्या इसकी सर्विस कराते हो कि नहीं। तो प्रभुपाद हर चीज के डिटेल्स में जाते थे। इससे पता लगता है द साइन ऑफ डिवोशन, एक्चुअली इफ यू गेटिंग टू डिटेल्स ऑफ समथिंग ऑफ योर सर्विस, इट्स अ साइन ऑफ डिवोशन। आगे प्रभुपाद कहते थे कि अन्य मंदिर घर से दूर है किंतु वृंदावन घर है। एक्चुअली थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि बाहर के मंदिर भी घर है लेकिन वृंदावन भी घर है। आउटसाइड टेम्पल, देयर होम्स अवे फ्रॉम द होम्स। किंतु जो उनके साथ वहां रहना चाहता था उसे उनकी निरंतर छानबीन तथा तीक्ष्ण आलोचना की परीक्षा से पास होना जरूरी था। उनको कठिन परिश्रम और त्याग का जीवन स्वीकार करना जरूरी था, और विशेष त्याग का तात्पर्य विशेष आशीष था। स्पेशल ऑस्टरी मीन स्पेशल ब्लेसिंग्स। जब एक भक्त ने वृंदावन के अपने कर्तव्यों से मुक्ति के लिए क्षमा मांगनी चाहिए ताकि वे पश्चिम में एक कृषि फार्म चला सकें, तो प्रभुपाद ने कहा 20 कृषि फार्म खोलना भी उतना महत्व नहीं रखता जितना वृंदावन में रहना है। जो लोग धैर्यपूर्वक स्थिर हैं अतः सभी कठिनाइयां उन्हें अमृत लगने लगी। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यक्त किया था, जब सेवा में कठिनाइयां उठ खड़ी होती है तो मैं उसे सुख का सूत्र पाता हूं। यहां पर एक मिसकंसेप्शन है कि प्रभुपाद के साथ जो रहते थे हमें भी अगर मौका मिलता तो बहुत अच्छा आरामदायक जीवन होता, लेकिन यहाँ पे भक्त अपना अनुभव बता रहे हैं कि प्रभुपाद के साथ जो रहते थे उनको बहुत स्क्रूटिनी में रहना पड़ता, बहुत तीक्ष्ण परीक्षण के अंदर रहना पड़ता था, और बहुत हार्डशिप थी उनके लिए कि प्रभुपाद उनकी छोटी छोटी चीजों को देखते थे और छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट भी करते थे, एक्सेक्ट बताते यहाँ पे आप गलती करें। और इतनी सारी जब चीजें पता लगती थी कोई भी अपना धैर्य खो सकता है, लेकिन यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि जो धैर्य पूर्वक लगे रहते थे, बाद में उनको लगा कि ये जो तपस्या हम प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं वो वास्तव में एक अमृत है। और यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि सेवा के अंदर जितनी भी कठिनाइयां आती हैं वो एक सोर्स ऑफ ब्लेस है, एक हमारे लिए आनंद का कारण है। आगे राधाष्टमी के दिन शिला प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर में लगे हुए एक विशाल गुरुकुल भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जब यह बनकर पूरा हो जाएगा तो भक्तों को चाहिए कि समग्र विश्व से उसमें 500 विद्यार्थी को दाखिल देना। वैभवपूर्ण मंदिर और अतिथि गृह के माध्यम से और शीघ्र ही गुरुकुल के माध्यम से श्रील प्रभुपाद का इरादा अधिकाधिक लोगों को वृंदावन में कृष्ण की शरण में आकर्षित करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक वस्तु निछावर करने को तैयार थे, अपना शांतिपूर्ण लेखन कार्य भी। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे चाहते थे कि उनके शिष्य भी त्याग करें। तो प्रभुपाद जी का जीवन यहाँ पे बताना कि बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। बहुत लेट सोना और इतने डिटेल्स में जाके भक्तों को ट्रेन करना और अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग मंदिर बनाना, भक्तों को ट्रेन करना, भक्त भी नए थे, कई सारे भक्त थे, कई चीज़ों में ट्रेन करना था। और प्रभुपाद जी को भी ये था कि मेरे पास बहुत कम समय भी है, तो बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा भक्तों को ट्रेन करना और बहुत अधिक मात्रा में ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि एक लीडर का ये भाव रहता है कि वास्तव में लीडर जो है कि उसके जाने के बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन वैसे चलती रहे और आगे बढ़ सके। तो एक ये लीडरशिप प्रिंसिपल यहाँ से प्रभुपाद जी के भक्त, और प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि जिस प्रकार का संघर्ष मैं कर रहा हूँ आगे वो भक्त भी कर, मेरे आगे भक्त भी कर सके, वो त्याग कर सके। तो प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा कहते थे, टेकिंग एंग्जाइटी फॉर कृष्णा इज अ प्रिविलेज फॉर मी। जब भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी को कि आपने सब कुछ हमें दे दिया है, अपने ग्रंथों का भी अच्छे प्रकार से ट्रांसलेशन कर लिया है, अब आप आराम कीजिए और हमें कार्य करने दीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, कृष्ण के लिए एंजाइटी लेना और टेंशन लेना या कुछ कष्ट लेना ये मेरे लिए बहुत सुख का कारण है और ये प्रिविलेज उससे मत छीनिए। और ये आप अपने भक्तों से भी ये अपेक्षा करते थे, क्योंकि अगर हम कृष्ण के लिए एंजाइटी नहीं लेंगे तो हमारी एंजाइटी कभी खत्म नहीं होगी एक्चुअली। तो अगर कोई किसी आध्यात्मिक एंजाइटी को लेता है, चिंताएं को लेता है, तो इसका मतलब कि वो उस चीज़ों के प्रति जिम्मेवार है, कि वो चाहता है कि मैं इन चीज़ों को सही रूप से कर सकूँ सॉरी। और भक्तों को भी ये लगता था कि जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये एंजाइटी लेते थे, ये चिंताएं लेते थे कृष्ण के लिए, बाद में जाके ये चिंताएं उन्हें के लिए अमृत बनी, क्योंकि ये चिंताएं उन्हें कृष्ण भावनित बनाती थी उस समय, और इस कृष्ण भावनित को उन्हें जागृत करा रहा, उनको हमेशा रिवाइव करती थी इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की। ये जो चिंताएं जो भक्त लेते थे, यही चिंताएं भक्त को कृष्ण भावनित बनाती है। तो इस यहाँ से भक्त हमें पता लगता है कि भक्त का भाव ये होना चाहिए कि आध्यात्मिक चिंताएं ले, कुछ आध्यात्मिक कष्ट ले, ताकि भक्त को लगे कि हाँ मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और हालांकि एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आई और उन्होंने क्वीन कुंती की एक प्रार्थना पढ़ी कि कुंती महारानी बोल रही है कि हमें बहुत सारी चिंताएं लेनी चाहिए, कृष्ण मुझे आप बहुत सारी चिंताएं दीजिए। तो ऐसे एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास गई और कहा कि प्रभुपाद जी मुझे भी ऐसा भाव आ रहा है कि मैं कृष्ण से यह प्रार्थना करूँ कि मुझे बहुत सारी चिंताएं दे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने कहा आप ऐसी प्रार्थना मत करो, यू ऑलरेडी हैव सो मच प्रॉब्लम्स। तो क्या चिंताएं लेनी है, कितनी लेनी है, ये भी एक हर की का अपना स्तर है, बट कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चिंताएं हमें होनी चाहिए भगवान के लिए, ताकि ये अंदर से भाव रहे कि हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि चिंताएं मतलब कुछ जिम्मेवारी, व्यक्ति तभी चिंता लेता है जब किसी चीज के प्रति जिम्मेवार होता है। तो आगे प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि निरंतर भ्रमण उनके लिए उत्तरोत्तर असुविधाजनक होता है, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना उनके लिए इनकन्वीनियंस होता है। उनके भारत वापस लौटने का भी यही कारण था, किंतु वे भ्रमण एकदम बंद नहीं कर सकते थे। जब तक वे भ्रमण नहीं करते, उनका आंदोलन जीवंत और स्वस्थ नहीं रह सकता था। तो एक और यहां से प्रभुपाद जी के आचरण सीखने को मिल रहा है कि प्रभुपाद जी कभी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहे। अगर लीडर कंफर्टेबल जोन में है तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। तो लीडर को अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ता है, ताकि अपने डिसाइपल्स को भी, अपने सबॉर्डिनेट्स को भी उस कंफर्टेबल जोन से निकाल सके। इसलिए असुविधा के बावजूद वे भ्रमण के लिए तैयार थे। उन्हें भक्तों का उन्हें भ्रमण के लिए आमंत्रित करना भी बंद नहीं हुआ था। और हाल में ही पुष्ट कृष्ण स्वामी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया। जब प्रभुपाद सहमत हो गए तो पुष्ट कृष्ण ने झट डर्बन और जॉन्सबर्ग में 10 उत्सवों अन्य कार्यक्रमों की योजना कर डाली, जिनमें अक्टूबर के 3 सप्ताह लगने थे। तो उन्होंने 10 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए डर्बन और जॉन्सबर्ग में प्रभुपाद जी के आने के लिए। हिंदू प्रधान मॉरिशस देवी के भक्तों ने भी प्रभुपाद को वहां आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद राजी हो गए। वृंदावन से प्रस्थान करके उनके संक्षिप्त पड़ाव दिल्ली, अहमदाबाद और बंबई में थे, फिर वे अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। अब अक्टूबर का समय है मॉरिशस। प्रबंध के कार्यों से मुक्त होकर अप्रपात अभिरुचि रखने वाले समूह को व्याख्यान देने के लिए पहले से अधिक स्वतंत्र थे। समाचार पत्रों और सरकारी मंत्रियों की ओर से मॉरिशस में उनका स्वागत अच्छा रहा था। किंतु जनता की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों से आध्यात्मिक ज्ञान में उनकी उनकी सच्ची अभिरुचि के अभाव का पता लगता था. दे वर आस्किंग अनइंटरेस्टेड क्वेश्चंस. क्या शाकाहारी होना आवश्यक है? क्या आत्मा तीसरी आंख में बंद है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. प्रभु आप हठ धर्मी दिखते हैं, क्या आपके जीवन दर्शन में कोई संदेह है? फिर भी लोग सामान्य युग थे और उन्होंने शीला प्रभुपाद को एक महत्वपूर्ण नेता और आध्यात्मिक प्रभु माना. वे वहां एक सप्ताह रहे. प्रभुपाद जी डर्बन में है, अक्टूबर 5. यह प्रभुपाद की दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा थी. गत 2 वर्षों से वहां के भक्त उनके लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वहां की सरकार विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रति सतर्क थी, इसलिए नौकरशाही की ढील ने महीने में मीन वीजा पाने में कई महीने लग गए थे. भक्तों को सरकारी अधिकारियों के पुनः रिक्शन के लिए प्रपात की पुस्तकों की प्रतिज्ञा भी भेजी गई थी. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के बाद रिसाइपर्स ने कुछ प्रभुपाद की बुक्स भी भेजी थी ताकि रिव्यू कर सके कि हमारी क्या फिलॉसफी है, और उसके आधार में हम प्रभुपाद जी को वहां डर्बन बुला सके साउथ अफ्रीका. एक सप्ताह भर श्रील प्रभुपाद रात में कम से कम 1000 श्रोताओं को सार्वजनिक भाषण देते रहे. श्रोता अधिकतर हिंदू थे, किंतु बहुत से गोरे भी थे. डर्बन विश्वविद्यालय वेस्टविले में प्रभुपाद ने भाषण के बाद वहां के एक प्राचार्य ने यह कहकर उनके भाषण की निंदा करनी चाहिए कि वह तो हिंदू धारणा है. श्री प्रभुपाद ने बार बार समझाने की कोशिश की कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत विश्वजनीन और वैज्ञानिक है, किंतु वह व्यक्ति कहता था कि यह हिंदू संस्कृति है. विश्वविद्यालय के रेक्टर डॉक्टर SP ओलिवियर ने प्रभुपाद की प्रस्तुति के प्रति सद्भाव प्रकट किया. ही रिस्पेक्टेड इस फिलॉसफी और उन्हें लंबे वार्तालाप के लिए बाद में वे रुके रहे. डॉक्टर ओलिवियर ने उनकी बात यह कहकर आरंभ की कि मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु आज रात बहुत थोड़े लोग आपकी बात को समझ सके कि यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है. शिरपाओं का जोहान्सबर्ग हवाई अड्डे पर आगमन संस्कृति दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका के लिए असाधारण था. गोरे लोग एक भारतीय के सामने नतमस्तक हो रहे थे, लेकर प्रणाम कर रहे थे. भक्तों ने एक पीली मर्सिडीज बेंज उधार ली थी और उसे ऐसे स्थान पर खड़ी किया था जो सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज उन व्यक्तियों के लिए आधारित था. किसी ने आपत्ति नहीं की. जब श्रील प्रभुपाद पहुंचे तो भक्तों ने फूल की पंखड़ियां बरसाई. कुछ युवा यूरोपीय दर्शक नमस्तक हुए और शिष्टाचार से प्रभावित होकर पुलिस ने श्री प्रभुपाद को सलाम किया और आदर पूर्वक उनके लिए उनकी मर्सिडीज का दरवाजा खोला. डर्बन की तरह ही प्रभुपाद के भाषण में श्रोताओं की उपस्थिति अच्छी रही. उन कार्यक्रमों में उनकी पुस्तकों की बिक्री के लिए प्रभुपाद बहुत व्यग्र थे और वे पुस्तक काउंटर पर जाके अपने शिष्यों से पूछते थे कि क्या वे पुस्तकें खरीद रहे हैं. उनकी इच्छा थी कि ना केवल हिंदू वरन यूरोपीय लोग उनकी पुस्तकें भी खरीदें. प्रभुपाद जाति भेदभाव के विरुद्ध जोरदार शब्द में बोले कि तुम महात्मा गांधी से प्रभुपाद से भिन्नता थी, जो उनके स्पष्ट विचारों के कारण दक्षिण अफ्रीका में जेल में डाल दिए गए थे. ये महात्मा गांधी के लिए बता रहे हैं. वे शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर बोले. उन्होंने कहा, यह काले गोरे का गोर धंधा क्या है? यह पागलपन है, यह जीवन की दैहिक धारणा है. दक्षिण अफ्रीका में साधारणतः ऐसे व्यक्तियों को विस्फोटक राजनीति माना जाता था, फिर भी श्रील प्रभुपाद के कंधन की एक ने सराहना की क्योंकि वे विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर बोल रहे थे. दक्षिण अफ्रीका में प्रभुपाद ने एक शिष्य राधा ने एकांत में पूछा कि जोहान्सबर्ग में जातीय प्रकरण का पर क्या व्यवहार करना चाहिए. प्रभुपाद ने कहा, इसका एकमात्र समाधान है सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन करना. जब राधा ने एक सामूहिक कृषि फार्म शुरू करने के बारे में पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को इतना उत्सुक मत रहिए, प्रचार नगरों में ही ठीक रहेगा. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इतने थोड़े समय में उन्होंने कई भक्तों को जोड़ दिया. इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे. जब प्रभुपाद जोहान्सबर्ग में थे तभी रामेश्वर और उसके दल ने अपना वायदा पूरा किया कि श्रीमद भागवत पंचम पांचवें स्कंद के दोनों खंड की प्रतियां उनके पास पहुंची। श्रील प्रभुपाद एक विश्वविद्यालय में अपने भाषण के समय इन पुस्तकों को ले गए थे और उसमें से भगवान ऋषभदेव के उद्देश्य को पढ़ा और सुनाया। उन्होंने इस श्लोक के आरंभ में किया, आरंभ में कहा, जिससे ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे कि इंद्रियों की परितृप्ति मात्र से जीवन बिताना ठीक नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण घटना आती है। प्रभुपाद प्रधानमंत्री से मिले, वापस आए थे, मित्र भाव प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रभुपाद के लिए मॉरिशस में रुकने की अवधि तक के लिए उन्होंने उपयोग के वास्ते में चालक सहित एक मोटर कार भेजी थी। प्रधानमंत्री ने प्रभुपाद जी के लिए एक मोटर कार दी थी ताकि उसमें जाएं। एक दिन प्रभुपाद ग्रामीण क्षेत्रों की सैर के लिए जा रहे थे, जब वे दाहिनी ओर से कार में चढ़ने को हुए तो पुष्ट कृष्णी स्वामी ने सुझाव दिया, श्री प्रभुपाद दूसरी ओर से आइए, वहां से आना सुरक्षित है। तो प्रभुपाद मान गए। वे आधे घंटे तक सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने के खेतों में पर्वतों तथा समुद्र तट से गुजरते हुए सैर करते रहे। एक स्थान पर रुककर वे समुद्र तट पर खड़ी एक चट्टान से गुजरे। जब वे लौटकर कार में वापस आए तो ब्रह्मानंद स्वामी ने दाहिनी ओर से दरवाजा खोला। इसे प्रभुपाद बोले, नहीं, दूसरी ओर से सुरक्षित रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि पुष्प कृष्ण ने कहा था। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद की काली साइट्रॉन कार एक मोड़ पर मुड़ रही थी कि सहसा उसी रास्ते से उनकी और आती एक वॉल्सवैगन कार प्रकट हुई। प्रभुपाद पुष्ट कृष्ण के पीछे बैठे हुए थे और ब्रह्मानंद चालक के पीछे। वॉल्सवैगन के प्रकट होने के एक क्षण पूर्व श्री प्रभुपाद पालथी मारकर तथा कार के फर्श पर अपनी छड़ी टिकाकर उसके सारे बैठे थे। जो ही वॉल्सवैगन उनकी ओर तेजी से बढ़ी कि चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे प्रभुपाद की कार बाई ओर घूम गई, किंतु वॉल्सवैगन भी उसी दिशा में मुड़ गई। फलस्वरूप दोनों में आस पर भिंडतन हो गई, दोनों कारें आपस में टकरा गई। पुष्ट कृष्ण हवारोह शीशे से जाकर टकरा गया, जिससे शीशा टूट गया। चालक का सिर भी शीशे पर टकराया और उससे उसके चेहरे पर खून आने लग गया। श्री प्रभुपाद पिछली सीट पर बैठे थे, किंतु उनकी मुखावृत्ति गंभीर हो गई। दहशत में आकर ब्रह्मानंद ने सहसा प्रभुपाद को बाएं बाहों में लिया, मानो कि वह उनकी रक्षा कर रहा था, किंतु संकट टल चुका था। तब ब्रह्मानंद कार से कूद पड़ा और वह एक मोटर वाले को रोकने की कोशिश करने लगा। पुष्ट कृष्ण बाहर निकला, उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और देखा कि प्रभुपाद के मुख पर चोट आ गई है। उनके पांव से रक्त निकल रहा था और शीशे के टूटे टुकड़े उनके पैर के नीचे बिखरे थे। प्रभुपाद बोले नहीं और वह संकेत दिया कि उन्हें कैसा लग रहा है। सहस पुष्ट कृष्ण को लगा मोड़ पर बेकार हुई कार खतरनाक स्थिति में है। वह सड़क में ब्रह्मानंद से जा मिला और कहा कि मोटर वालों को आगाह कर दे और किसी को रोकने की कोशिश ना करें। साइट्रॉन और वॉल्सवैगन कार दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, दोनों कारें पूरी खराब हो गई थी और वॉल्सवैगन में बैठे पुरुष और स्त्री दोनों को चोटें लगी थी, किंतु मोटर वाले तत्काल रुक गए और जब घायल व्यक्ति को मदद मिल चुकी थी तब प्रभुपाद उनके शिष्य एक कार में बैठे थे और मंदिर वापस आ गए। तो इसमें प्रभुपाद भी कई जगह पे कुछ चोटें भी आई थी सर पर और पैरों में भी प्रभुपाद जी खून निकल रहा था। और जब फिर प्रभुपाद जी वापस मंदिर पहुंचाया गया तो हरिकेश व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और उसे आश्चर्य हो गया था कि प्रभुपाद को इतना विलंब क्यों हो रहा है। तभी सहसा प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। वे तन कर चल रहे थे और कुछ नहीं बोले। जब हरिकेश ने देखा कि तीनों को चोटें लगी हैं तो वह चिल्ला उठा, हे भगवान, यह क्या हुआ, क्या हुआ? किंतु प्रभुपाद अपने कमरे में गए और चुपचाप बैठ गए। एक भक्त चोटों के लिए पट्टी लाया। चोटें प्रभुपाद की ठुड्डी, हाथ तथा टांग में और पुष्ट कृष्ण भ्रमण के सर पर लगी थी। दुर्घटना के बाद से श्रील प्रभुपाद कुछ नहीं बोले थे। अंतो गत्वा वे बोले, असनपि क्लेश आस देहा, और उन्होंने अनुवाद किया, जो ही तुम इस भौतिक देह को स्वीकार करते हो तो ही नाना प्रकार के क्लेश आपको घेर लेते हैं। हम शांतिपूर्वक कार में बैठे थे कि अगला ही क्षण दुर्घटना हो गया। उन्होंने संक्षेप में टक्कर की बात की और ब्रह्मानंद स्वामी से बताया कि किस तरह दुर्घटना के ठीक पहले प्रभुपाद ने छड़ी के सारे अपनों को सुस्थिर कर लिया था और इससे अधिक गहरी चोट से वे बच गए। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ी रेजिन तथा हल्दी ले आओ और इसे थोड़ी सी राई के साथ मिलाकर इन्हें गर्म करो। वे पुनः भागवत दर्शन और व्यवहारिक कौशलियां उपचार की बात करने लगे, किंतु वह एक भयावह दुर्घटना थी जो श्री प्रभुपाद ने भक्तों के कीर्तन कर किंतु वह भयावह दुर्घटना तो थी और प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कीर्तन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों कारें विनष्ट हो गई थी, चोटें नगण्य थी। प्रभुपाद एक योद्धा की तरह तीन स्थानों पर पीली पुलटिस लगा रख बैठे थे, पट्टी लगाई थी, और वे हरिकेश उच्च स्तर में चैतन्य चेता में से हरिदास ठाकुर का अंतधान प्रसंग पढ़ रहा था। जब श्रील प्रभुपाद यात्रा करने के खतरों के बारे में चर्चा करने लगे तो विस्तृत दौरों की उपादेयता पर संदेह करने लगे। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैष्णव साहित्य का अनुवाद करने का उनका महान लक्ष्य मोटर गाड़ियों की यात्रा करके उन अपने जीवन को खतरे में डालने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बंबई लौटने से पहले वे नैरोबी जाने का विचार करते थे, किंतु उन्होंने कहा कि वे नैरोबी की यात्रा रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे बंबई कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, किंतु कुछ लोगों ने अफ्रीका में इतनी सारी योजना बना रखी थी कि उन्हें आना पड़ा। कदाचित इस दुर्घटना के बाद यह सूचक थी कि वे भारत लौट जाना चाहते हैं। जगत श्रीपापात की श्रीपापा लीला मृत की, तो उसके बाद दोबारा फिर प्रभुपाद वृंदावन में आ गए थे। हरे कृष्ण। कुछ भक्तों कुछ प्रश्न कुछ